ईशानी पाकिस्तान में कैप्टन जैन के घर पर छुपकर रह रही थी। कैप्टन जैन ने उसे किसी के भी सामने आने से मना किया था। उन लोगों के जाने के बाद ईशानी ने किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला था। शाम को जब जैन, साद और आदम घर पर आए, तब गलती से ईशानी ने साद को पीट दिया था। मिशन पर होने की वजह से उन्होंने अपने चेहरे पर काला पेंट लगा रखा था और ईशानी ने उसे चोर समझा था। कैप्टन जैन और आदम आगे आए और उन्होंने सच्चाई बताई तो वो सब साद पर हंसने लगे। अचानक वहां किसी ने दस्तक दी जो काफी सख्ती से उन्हें डांट रहा था। उसके आने के बाद ही सारे शांत हो गए थे। ईशानी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे क्योंकि कैप्टन जैन ने उसे छुपकर रहने के लिए कहा था और फिलहाल जो शख्स था उसने आर्मी ड्रेस पहन रखी थी। वो एक लड़की थी जो लगभग 25 साल के आसपास थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी और आर्मी से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने आर्मी ड्रेस पहना हुआ था। वो लड़की आगे आई और गुस्सा करते हुए बोली, हद हो गई, यहाँ आप लोगों ने इतना बड़ा रायता फैला रखा है और उसके बाद भी तुम्हें हंसी आ रही है। अगर गलती से भी इस मोहतरमा के बारे में जनरल को पता चल गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। खैर तो आपकी भी नहीं रहने वाली डॉक्टर जन्नत, आखिर आप ही ने तो इसी का ट्रीटमेंट करके इसे बचाया है, कैप्टन जैन उसकी तरफ पलट कर बोले। ईशानी हैरानी से जैन की तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर वो लड़की कौन थी और उसने ईशानी का ट्रीटमेंट क्यों किया था। ईशानी उन्हें कुछ पूछ पाती उससे पहले जैन उसकी तरफ पलट कर बोला, इनसे मिलिए मिस ईशानी, ये हमारी मंगेतर डॉक्टर जन्नत हैं। इन्हीं की बदौलत आज आप जिंदा हैं और हम सबसे छुपाकर आपका ट्रीटमेंट करवा पाए। ईशानी जन्नत को थैंक यू कहना चाहती थी। उसके बोलने से पहले ही जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, हमें शुक्रिया मत कहिएगा। जब हम डॉक्टर बने थे तो हमने कसम ली थी कि सामने मौजूद मरीज चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसका इलाज करेंगे। बस इसीलिए हमने आपका इलाज किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि कैप्टन साहब इतना सेल्फिश निकलेंगे कि अपना काम निकलवाने के बाद हमें ये तक नहीं बताएंगे कि आपके होश आ गया है, बोलते हुए जन्नत ने नाराजगी जताई। उसने तिरछी निगाहों से जैन की तरफ देखा तो उसने अपना एक कान पकड़ लिया था। गलती उनकी भी नहीं है, इन्हें लगा कि शायद मैं कोई जासूस हूँ, बस इसी वजह से ये सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अब इन्हें मुझ पर यकीन हो गया कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बस कुछ बुरे हालातों के चलते यहाँ पहुँच गई हूँ, ईशानी ने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा। जन्नत उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को सख्त कर लिया। वो जैन की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, अगर इन्होंने आपके होश आने की बात हमें पहले बता दी होती तो इतनी गलतफहमियां पैदा ही नहीं होती। पहली बार जब हमने आपको देखा था तो आप हमें आप जानी पहचानी से लग रही थी। फिर हमने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया और सर्च किया तो पता चला कि आप तो हमारे कैप्टन साहब के फेवरेट एक्ट्रेस की बहन है, रुद्राक्ष खुराना की वाइफ और एक लॉयर। बस किसी ने हमें इत्तला देने की जहमत नहीं उठाई। जन्नत के शब्दों से साफ था कि वो नाराज थी। उसकी इतनी नाराजगी के बावजूद जैन ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अभी तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ और आप अभी से बेगमों वाली हरकतें करने लग गई। कम से कम ताने तो मत दीजिए, हमें टाइम नहीं मिला वरना आपको पहले बताते। जैन और जन्नत की बातों से साफ था कि उनका रिश्ता काफी प्यार भरा था। उन्हें देखकर ईशानी को रुद्राक्ष भी याद आने लगी थी। उसका और रुद्राक्ष का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, तकरार भरा प्यार का रिश्ता। ईशानी की आंखें नम हो रही थी, ये जन्नत ने महसूस कर लिया था। वो उसके पास आई और उसका हाथ सहलाकर बोली, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं। एक अनजान देश में आ गई हैं, ऊपर से दोनों देशों के रिश्ते भी आपस में कुछ खास नहीं हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपको वापस भिजवा देंगे। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, ईशानी ने धीमी आवाज में कहा। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। फैमिली की याद आ रही थी या हस्बैंड की याद आ रही थी? वो आपको बहुत मिस कर रहे होंगे, हम पर यकीन कीजिए, जैसे ही हमें चांस मिलेगा हम आपको इंडिया भिजवा देंगे, जन्नत ने जवाब दिया। जन्नत के बाद अब कैप्टन जैन आगे आया। उसने ईशानी से कहा, पता है मेरी छोटी बहन भी आप ही की उम्र की है, बिल्कुल आप ही की तरह जिद करती है, और इत्तेफाक देखिए उन्हें भी लॉयर बनना है। लगता है लॉयर्स को लहज करने में ज्यादा मजा आता है। जैसे हम अपनी छोटी बहन की हर जिद पूरी करते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी बहन समझकर आपकी मुसीबत दूर करने की कोशिश करेंगे। जैन और जन्नत की परवाह देखकर ईशानी को पहली बार लग रहा था कि वो अनजान जगह होकर भी बेगानों के बीच नहीं है, कोई उसकी परवाह करने के लिए है। ईशानी का मूड खराब देखकर वो सब ईशानी का मूड सही करने की कोशिश करने लगे। साथ ने कहा, देखिए डॉक्टर जन्नत, इन्होंने हमें किस तरह धोया है, वो भी बिना साबुन के। प्लीज हमें कोई दवाई दे दीजिए वरना सारी रात हमें नींद नहीं आएगी। अच्छा ईशानी, आपने कुछ खाया? आदम बोला, आपने कहा था कि आप वेजिटेरियन हैं, हमारे यहाँ तो अंडे के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, उसी से हम ऑमलेट या भुर्जी बना लेते हैं और टाइम ना हो तो बॉयल करके खा लेते हैं। आप बताइए हम आपके लिए क्या लेकर आए। आदम के पूछने पर ईशानी को याद आया कि उसने अब तक उन्हें नरगिस के बारे में नहीं बताया था जो उनके लिए खाना लेकर आई थी। ईशानी कुछ कहती उससे पहले जैन की नज़र उसके कपड़ों पर गई। आप बाहर गई थी क्या या कोई और यहाँ आया था? मैंने पहले नोटिस नहीं किया लेकिन आपने नए कपड़े पहन रखे हैं, जैन हैरानी से पूछा। ईशानी ने तुरंत जवाब में कहा, हाँ एक बहुत ही अच्छी औरत आई थी, आपके पड़ोस में ही रहती है, उसी ने मुझे कपड़े और खाना दिया था। उसने वेज राइस बनाए थे, खाने में ठीक ठाक ही थे और कपड़े भी दे दिए थे। ईशानी के मुंह से किसी औरत का जिक्र सुनकर आदम, साद और जैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए उनके दिल में डर पैदा हो गया कि अचानक उनके घर में कौन आ गया। साध ने फिर उनकी तसल्ली के लिए कहा, जरूर नरगिस आप ही आई होगी। हाँ, उनका नाम नरगिस ही था, ईशानी ने झट से कहा। बहुत ही अच्छी औरत थी, वरना कौन आजकल किसी को खाना और इतने अच्छे कपड़े देते हैं। ईशानी की बात सुनकर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अचानक वो चारों खिलखिलाकर हंस पड़े। ईशानी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। जन्नत ने ईशानी की कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, अरे आप भी उनकी बातों के चाल में आ गई। पता है, जब मैं भी नई नई आई थी तो मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे भी वो ऐसे ही बिरयानी चिपका कर गई थी। मैंने भी बहुत दुआएं दी थी उसे, लेकिन उसे बिरयानी खाने के बाद 3 दिन तक मेरा पेट खराब रहा था। हाँ, क्योंकि नरगिस मैडम की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, जैन ने जवाब दिया। फिर उसने ईशानी को समझाते हुए कहा, वो आपको इतना सारा वेज खाना इसलिए देकर गई थी क्योंकि उन्हें कुकिंग का शौक है। उन्होंने कुछ नया ट्राई किया होगा और यहाँ के लोग ज्यादा वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करते हैं। अब बेचारी अपने पालतू कुत्तों को भी कितना खाना डाले। जरूर वो फेंकने के लिए गई होगी और उसे आप दिख गई तो उसने आपको थमा दिया। ऐसा तो मत बोलिए, बहुत ही नेक औरत थी, कपड़े तक देकर गई है, ईशानी ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर जन्नत हंसते हुए बोली, इसके पीछे की भी कहानी है। आपने जो जोड़ा पहना है वो हमने 2 दिन पहले ही सेल में देखा था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, लेकिन वहाँ कपड़े वापस नहीं लेते हैं। अब नरगिस अपी ने कपड़े खरीद लिए होंगे, उनको आए नहीं, रिटर्न वो लेने वाला था नहीं, और इतने हल्के कपड़े वो किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही फेंकने से अच्छा है ना कि किसी की दुआएं ली जाए।
ईशानी बेचारा सा मुंह बनाकर उनकी तरफ देख रही थी। जैन ने फिर कहा, अब जन्नत आ गई है तो उसे आपके खाने का इंतजाम भी कर देगी और साथ ही कपड़ों का भी। बस अब हम एक बार अपने अब्बू से बात कर लें, फिर आपको यहाँ से भिजवा देंगे। ईशानी ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। जन्नत तुरंत ईशानी के लिए खाना बनाने में लग गई थी। ईशानी उसकी हेल्प कर रही थी। वहीं इतने दिनों बाद ईशानी को ठीक देखकर साद, आदम और जैन भी खुश थे। वहीं दूसरी तरफ नरगिस, जिसने सुबह ईशानी को कपड़े और खाना दिया था, वो अपने घर पर अपनी सास के सामने खुद का गुणगान गा रही थी। नरगिस ने खुद की तारीफ करते हुए कहा, आप यकीन नहीं करेंगी अम्मी जान, बहुत ही मजलूम लड़की थी, बोल तक नहीं सकती थी। कैप्टन साहब के यहाँ साफ सफाई का काम करने आती है। मैंने उसे सुबह जो चावल बनाए थे वो दे दिए और साथ ही सेल से खरीदे हुए कपड़े थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें कितनी बार कहा हुआ है घटिया सामान मत खरीद करो। अब तुम्हारे उसे सेल के कपड़ों से तो उसे बेचारी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो सस्ते चावल सेल में खरीदे थे उससे उसका हाजमा खराब हो गया। तो ऊपर से तुमने उसमें सड़ी हुई सब्जियां भी डाली थीं, नरगिस की सास ने उसे डांटते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, बस एक गरीब की दुआएं लगेंगी, नरगिस ने खुश होकर कहा। उसकी सास उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर रह गई। वो जानती थी कि नरगिस उसके सुनने वाली तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रुद्राक्ष एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। वो खुराना फैमिली के अपने अगले टारगेट के आने का इंतजार कर रहा था। बस इसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाना है, मुझे पता है कि किसकी क्या कमजोरी है और उसी हिसाब से फायदा उठाऊंगा। विक्रांत खुराना और माया खुराना, मैं तुम दोनों को अकेला कर दूंगा, इतना अकेला कि तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाओगे, रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा। वो घड़ी में टाइम देख रहा था, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर आ रही शख्स पर पड़ी तो उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई।